नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी एवं शांति। जीवन के सच को समझते हुए जब हमने ये जाना कि परमपिता परमात्मा स्वयं हमें अपना ज्ञान दे रहे हैं, हमारे बारे में बताते हैं, जीवन का ज्ञान देते हैं कि कैसे इस जीवन को जीना है और कैसे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो तब हम उसे मुरली कहते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मुरली आपके लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज फिर उन अमृत वाक्यों की तरफ, उन अमृत की बूंदों की तरफ चलते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी बहन, हमारे साथ है शीलू बहन। ओम शांति शीलू बहन।
ओम शांति।
आज एक बार फिर हम आपसे चाहेंगे कि मुरली जो बाबा की रोज बजती है, अगर हम कहें जो एक बहुत खूबसूरत जो जीवन का एक सच बताते हुए जीवन कैसे चलना है उसके बारे में बाबा बताते हैं, उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा अपने सभी कुछ दर्शक नए भी जुड़ते हैं उनके साथ शेयर कर लें कि हमारी अपनी सही पहचान, परमात्मा की पहचान, परमात्मा का स्वरूप और समय चक्र का जो स्वरूप है वो क्या है।
कई लोग हमसे पूछते हैं आध्यात्मिकता क्या है। तो हम कहते हैं आध्यात्मिकता को अगर हम चार शब्दों में कहें तो एक है आत्मा का ज्ञान, स्वयं की पहचान, स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिट क्या है, आत्मा, और मैं वो आत्मा हूँ। फिर दूसरा है परमात्मा का ज्ञान, ये बहुत जरूरी है। कई लोग समझते हैं कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान बिना स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी है प्रकृति, और प्रकृति तो हम कहते हैं वो तो विज्ञान की शक्ति है, तो आध्यात्मिकता तो विज्ञान से श्रेष्ठ है,
क्योंकि खुद को पहचानने की बात, इट्स जर्नी, इट्स माय ओन जर्नी, तो हम उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकते
जी हैं? तो तीसरी बात है कर्म का ज्ञान, ये भी आध्यात्मिकता के अंतर्गत ही आता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, क्योंकि मनुष्यों के अंदर बहुत भ्रांतियां है इसके बारे में। हम कैसे माने कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है, किसके लिए एक कर्म अच्छा है दूसरे के लिए वही हाँ, कर्म बुरा है।
बहुत बार ये कहते हैं कि बहुत रिलेटिव है चीजें।
रिलेटिव तो है, क्यों नहीं, लेकिन समय, स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति के अनुसार वो कर्म का स्वरूप बदल जाता है, ये भी है। इसलिए कर्म को उस रूप में समझना जिसमें सब बातें समझना, ये सब कर्म की गति के अंतर्गत आता है और ये सब स्पिरिचुअलिटी में आएगा। और फिर चौथा है समय का ज्ञान। तो इसलिए ये चार बातों का अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हम कहेंगे ये सही स्पिरिचुअलिटी है, और यही स्पिरिचुअलिटी हमें बाबा सिखाते हैं। तो आज भी जो बाबा ने हमें मुरली में सुनाया है उसमें दो प्रकार की पर्सनालिटीज की बात सुनाई है। एक है फिजिकल पर्सनालिटी, मनुष्य के शरीर का हाव भाव, वस्त्र, बाल आदि आदि जो कुछ समझते, पर्सनालिटी है, कपड़े कैसे पहनते हैं, तो ये फिजिकल पर्सनालिटी
जो बाहरी है,
जो बाहरी है उसको हम कहेंगे कि एक्सटर्नल। और फिर है स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, यानी आत्मा की पर्सनालिटी, आत्मा के वो गुण, शक्तियां, कलाएं, विशेषताएं जो अपने जीवन में हम कर्म में अनुभव करते हैं, वो आंतरिक पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। तो बाबा कहते हैं फिजिकल पर्सनालिटी पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, बॉडी लैंग्वेज कैसे है, बैठना कैसे, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, मैनर्स क्या होते हैं, ये सब फिजिकल पर्सनालिटी में आते हैं। लेकिन वो तो जरूरी है ही, पर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी या इनर पर्सनालिटी है कि मेरे अंदर अंतर्मुखता हो, धैर्यता हो, मधुरता हो, सहनशीलता हो, निर्भयता हो, ये सारे गुण बहुत जरूरी है। कैसे हमारे रिलेशनशिप औरों के साथ सुदृढ़ हो, उसमें प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, रहम हो, ये सारी भावनाएं हो, ये सब स्पिरिचुअल में आती है। तो आज बाबा ने उस पर बहुत सूर दिया है। और वास्तव में आत्मा का यही सच्चा धन है। मनुष्य समझते हैं कि वो ही धन सब कुछ है, लेकिन उस धन के लिए तो कहा गया है वो धन तो हाथों की मैल है, वो धन तो आता है जाता है।
एक्चुअली शीलू बहन अगर हम देखें तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी कोई आत्मिक पर्सनालिटी भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कोई हमारा इंटरनल खजाना भी हो सकता है, इंटरनल भी कोई मनी हो सकती है या आंतरिक जो धन है वो भी हो सकता है। तो हमें जो दिखता है हम उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। तो चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस की बात हो, चाहे वो फिजिकल हमारी बॉडी की बात हो, फिजिकल पर्सनालिटी की बात हो, हम उसी पे सारा केंद्र, अपना एनर्जी का केंद्र लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं था कि समवेयर मुझे लगता है कि ये जरूर है।
अंदर झांकने का, अंदर जाने का मौका भी नहीं लेते और पता भी नहीं है, दोनों बातें।
तो अज्ञानतावश भी हमने जो है वो चीजें, क्योंकि समझ में ही नहीं आती थी, लेकिन आज जब हमारे पास ज्ञान है, जब हम बात को समझ सकते हैं, उसे धारण कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमने अपनी पहचान कर ली, तो अब हम जो हैं वो उससे बाहर हमें निकल के आगे अपने इंटरनल जर्नी पे जरूर चलना चाहिए।
जी, तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। ये सार है मुरली का। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। आज देखो कितने ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं चारों तरफ, कितना धन कमाने के कई तरीके,
सब
क्लब्स खुल गए हैं, बहुत कुछ। तो शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व आत्मा की चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते, परमात्मा ही बता सकते हैं कि आत्मा की उन्नति कैसे करनी है। ये बाप की ही जिम्मेदारी है ही परमात्मा की जिम्मेदारी। तो ये है सारी मुरली का सार। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने आप से पूछो कि सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए क्या श्रीमत हमें मिली है। ये अपने आप से पूछो। तो उत्तर है, बच्चे अपनी उन्नति के लिए दो बातें बाबा ने कही है, ये सार है इस मुरली का। अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। अभी ये भी एक बात है कि आत्मा में जंक लग गई है। देखो, जैसे सोने में चांदी, तांबा, लोहा पड़ने से सोने की वैल्यू कम हो जाती है, या लोहे पर जंक लग जाती है तो लोहे की वैल्यू कम हो जाती है। तो आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें विकारों की जंक मिल गई, तो आत्मा की वैल्यू कम हो गई। तो बाबा कहते हैं, तो सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए सदा याद की यात्रा पर हो, जिससे ही आत्मा की जंक निकलेगी। परमात्मा की याद की अग्नि में आत्मा शुद्ध होगी तो जंक निकलेगी। और दूसरा बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि कभी भी बीती को याद नहीं करो, जिसको बाबा कहते हैं बीती को फुल स्टॉप लगाओ,
बिंदी लगा दो,
और आगे के लिए कोई बहुत एम्बिशंस उस रूप से भी न रखो। बहुत
पता नहीं क्या ज्यादा,
जैसे कि पता नहीं क्या कर डालेंगे।
लेकिन एक्चुअली श्री बहन, अगर हम देखें, जब तक हम नहीं जानते थे अपने बारे में, तो तब तक तो हम ये सारे इस पूरे विशेष सर्कल में थे ही थे बाहरी। लेकिन जब अपनी पहचान पता चल जाती है, जब ये भी पता चल जाता है कि ये हो क्या रहा है और होना भी क्या है, मतलब जिस भी तरफ जाना है हमें, परिवर्तन तो यहां करते हुए एक सतयुगी दुनिया की तरफ जाना है, तो इन चीजों से थोड़ा थोड़ा मोह तो हटना शुरू हो जाना चाहिए।
बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, और होता भी है। अपना अनुभव जो कई सुनाते हैं तो होता भी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। अभी तो समझ गए, रूहानी बच्चे माने आत्माएं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की जिम्मेदारी परमात्मा के ऊपर है। सब वही करता है, वही कराता है, वही सब जिम्मेदार है।
पता नहीं उसने क्या करना है, पता नहीं क्या होगा, वो क्या चाहता है। कितनी बार हम ऐसी शिकायतें करते हैं कि वो तो हमसे नाराज है, हमारे लिए तो कुछ करता ही नहीं, इतने दुख देता है वो हमें।
अब आत्मा की उन्नति अथवा मन को शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं, शरीर को तो कितना भी कुछ करो, श्रृंगार करो, उससे कोई आत्मा की उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो चलती रहती है। कलयुगी शरीर है, पंच तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर की खिटपिट चलती रहती है। तो बाप बतलाते हैं सारा मदार आत्मा पर है, सारा मदार शरीर का भी मदार आत्मा पर है। आत्मा को ही 16 कला संपूर्ण बनना है, तो आत्मा ही फिर कला रहित भी बनती है,
जो आज हम जिस पे पहुंचे हुए हैं, जो कोई कलाओं से
16 कला भी बनती है तो कला रहित भी बनती है, फिर 16 कला आत्मा को ही बनना है। बाप कहते हैं सतयुग में तुम 16 कला संपूर्ण थी तो आत्मा को बहुत सुख था, आत्मा की चढ़ती कला थी, फिर धीरे धीरे नीचे आत्मा आती गई, उतरती कला होती गई। अब आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बाप ही फिर बताते हैं, मनुष्य तो नहीं बता सकते हैं। तो वहां है जिस्मानी बातें दुनिया में, और परमात्मा हमें रूहानी बातें बताते हैं आत्मा की उन्नति के लिए। तो बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति एक ही बार होती है, ये भी समझना है, कोई समझे कि बीच बीच में आत्मा की उन्नति होती रहती है, नहीं, सारे साइकिल में नीचे ही उतरना है। 16 कला से 14 कला, 12 कला, 8 कला, अभी एकदम कलाहीन हो गई आत्मा, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाती है, तो आत्मा की कलाएं भी घटती जाती है। और आत्मा की उन्नति परमात्मा ही कर सकते हैं, और वो एक ही बार होती है। इस समय आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति कराने वाला बाप आता है, उनके बिना किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो सके। इसलिए हम बताते हैं कोई भी आत्मा बीच में वापस परमधाम नहीं जा सकती है, इसलिए ड्रामा के अंत में ही सबको वापस जाना है, क्योंकि परमात्मा ही ले जा सकते, इसलिए वो ही चढ़ती कला करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये छीछी तमो प्रधान आत्माएं जो इस समय हो गई है वो मेरे पास आ न सके। हाँ, ये मनुष्य कहते हैं कि शांति कैसे मिले, उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे। भले कहते मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, पर जाएंगे कहाँ ये भी पता नहीं, क्या होगा वो भी पता नहीं। पुकारते हैं फिर उसके लिए, ये तो कहते हैं, पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे पतितों को पावन बनाने वाले आकर हमें पावन बनाओ, ये भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत अच्छा भजन गाया था ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यानी पतित पावन वास्तव में परमात्मा एक ही है, वो सच्चा राम है। हम सब आत्माएं सीताएं और वो राम, तो आत्मा रूपी सीता उस पतित पावन राम को पुकारती है कि हे पतित पावन राम आकर हमें पावन बनाओ, या जीवन मुक्ति धाम में हमें ले जाओ। तो परमात्मा ही आत्माओं को मुक्ति धाम में ले जाएंगे, शरीरों को तो नहीं ले जाएंगे, आत्मा को ही ले जाएंगे, शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाएंगे। परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है, इसलिए आत्मा की उन्नति करनी जरूरी है, क्योंकि आत्माओं को वापस परम धाम जाना है, परमात्मा आत्माओं को ही ले जाएंगे। अब इसके लिए परमात्मा हमें ईश्वरीय मत देते हैं कि आत्मा की उन्नति कैसे करो। मनुष्य जो मत देते हैं वो है मानव मत। तो मानव मत और ईश्वरीय मत में रात दिन का अंतर है।
देखिए, जो भी मनुष्य है वो ऑलरेडी उसी स्टेज पे पहुंचा हुआ है। हम बात तो कर रहे हैं कि तमो प्रधान स्थिति में हम में से हर आत्मा, हर मनुष्य जो है वो पहुंच चुका हुआ है। तो कितना भी स्पिरिचुअली अवेकेंड कोई भी मनुष्य हो, वो कहीं ना कहीं तो डिप्लीशन है ही
जी। इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आता हूँ, इन साधु संतों का भी उद्धार मैं ही करता हूँ। ये परमात्मा ही कहता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं उद्धार कर सकती, सबका परमात्मा ही उद्धार करता है। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त करने के लिए कहते हैं, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो कमाल है बाप की, कैसे सब आत्माओं की उन्नति करते हैं, तब कहते हैं मनुष्य भगवान के लिए क्या कहते हैं, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। ईश्वर की गत मत इतनी न्यारी है कि वो ईश्वर ही जाने, और कोई ईश्वर की गत मत नहीं जान सकता है। आत्मा में ही तो मत है ना, यानी बुद्धि आत्मा में है तो परमात्मा मत देते हैं, माना बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ईश्वरीय मत से चढ़ती कला होती है और मानव मत से उतरती कला होती है। तो मानव मत से कैसे हम उतरती कला में ही आए हैं, द्वापर कलयुग में उतरते उतरते कहाँ पहुंच गए हैं, विकारों के वश हो गए हैं। फिर ईश्वरी मत मिलती है, फिर चढ़ती कला होती है। ये भी ड्रामा में नोंद है, कई कहते हैं ना ये क्यों हुआ, हम कहते हैं ये ड्रामा में नोंद है। डोंट आस्क क्वेश्चंस, ये जैसे प्ले देखने जाते, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कई बच्चे इंक्विजिटिव होते, मम्मी से पूछते मम्मी ये क्यों हो रहा है, मम्मी ये क्यों हो रहा है, तो मम्मी क्या कहेगी, तुम चुप होकर okay, सुनो हाँ,
देखो तो
उसका मजा लो ना, पूछो मत, कोई राज होगा, अभी पता नहीं है क्या राज है, धीरे धीरे खुलेगा तो देखते जाओ, पूछो नहीं। तो बाबा भी कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, क्यों क्यों मत पूछो, ये ड्रामा में नूंद है। अब बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं वो हरेक खुद समझ सकते हैं। क्योंकि बाबा तो बताएंगे, अभी वो बच्चे कितना करते हैं
वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता
है। आपसे पूछे तो करते हैं या नहीं करते वो हरेक खुद समझ सकते हैं। बच्चे समझते हैं, शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। देखो जब शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो फिर वो जो जल जहाँ से निकलता है उसको गौ मुख कहते हैं, वहाँ गाय का मुख बनाते हैं, फिर वहाँ से वो निकलता है। तो वास्तव में शिव बाबा कहते हैं कि मैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा बोलता हूँ तो ज्ञान अमृत बोलता हूँ, तो ये जैसे गौ मुख हो गया। वास्तव में है तो पुरुष का शरीर, लेकिन बाबा कई बार फिर ये भी रास बताते कि ये ब्रह्मा माँ हो गई तुम बच्चों की। इस ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं। तो पहले जिसे दिखाते ना ब्रह्मा के मुख से रचना रची
वो बनाई गई है,
तो इसीलिए मुख से रचना तो कैसे होगी, कोई मनुष्य थोड़ी मुख से निकल आएंगे, मुख से तो ज्ञान निकलता है, मुख से तो ज्ञान रत्न निकलते, तो शिव बाबा भी ब्रह्मा मुख से ज्ञान रत्न निकालते हैं। तो वो गऊ का मुख दिखा दिया कि उसमें से अमृत निकलता है ये ज्ञान अमृत की बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब जागो, अब मैं आया हूँ तुमको शांति धाम में ले जाने के लिए, तो इस पतित दुनिया को चेंज होना है जरूर, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब तुम ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी ये बाबा ने राज बताया है कि अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे कई प्रश्न मन में जागेंगे लेकिन बहुत ज्यादा सोचो मत, समय आएगा अपने आप इन प्रश्नों का जवाब मिलता जाएगा। टीचर तो बैठा है, पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, तो पढ़ाई चल रही है इसीलिए पढ़ते जाओ अपने आप प्रश्नों का जवाब मिलता जाएगा। ये सत्य ज्ञान की सत्य पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई को पढ़ने से रोशनी अपने आप मिलती जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं चेंज होना है, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब ट्रांसफर हो जाएंगे, अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है इसलिए अभी नहीं ट्रांसफर होगा, अभी समय बाकी है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे अब पुरुषार्थ तेज करो, योग से पवित्र बनो तो धारणा अच्छी हो। अब कई लोग समझते हैं कि ये देवताओं ने ना हिंसक युद्ध किया, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसने स्वदर्शन चक्र चलाया और अकासुर बकासुर के गले काटे। अब बाबा फिर कहते हैं कि लिखा है कि कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर को मारा या ऐसे असुरों को मारा, बाप कहते हैं देवताएं हिंसा कैसे कर सकते हैं।
एक्चुअली वो बात हम पहले की थी हमने एक बार कि स्वदर्शन का मतलब स्व का दर्शन करना
जी,
तो इसीलिए
गले काटने की बात नहीं है, विकारों के गले काटने
तो वो
की
चक्र
बात
का
है।
जब समय चक्र का जब पता चल जाता है तो विकारों का जब स्वदर्शन इस चक्र का हो गया
हाँ।
तो वो विकारों को अपने आप जो है गला करने
जी। स्वदर्शन कहो या सुदर्शन कहो, सुदर्शन भी कहते हैं, अच्छा दर्शन, आत्मा का अच्छा दर्शन। तो बाबा कहते हैं बाप तो हिंसा करा न सके और देवताओं ने भी हिंसा नहीं की, बाप तो रहम दिल है, दुख हरता है सुख करता है, फिर वो दुख कैसे दे सकता है। ये बहुत बड़ी भूल इंसान करता है जो समझता है कि भगवान ही दुख देता है भगवान ही सुख देता है। गीत है ना, तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करतार, सब कुछ मंजूर है।
कई बार ये भी है कि तू ही बिगाड़े तू ही बनाए, तू बिगाड़ भी कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि परमात्मा बिगाड़।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको भी समझो। ये नहीं कि सब कुछ भगवान करते हैं, परमात्मा का कर्तव्य सबसे न्यारा है, तो वो न्यारा कर्तव्य अब परमात्मा आकर कर रहे हैं। ये जब हम समझ जाएंगे तो परमात्मा के कर्तव्य में हम भी शामिल हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। फिर हम कहेंगे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। तो सदा याद रखें कि मैं पुण्य आत्मा हूँ जो सबको खुशियों के खजाने से संपन्न बनाने वाली और दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाली आत्मा हूँ।
बहुत सुंदर आज जो आपने हमें मुरली सुनाई शीलू बहन, और जिस तरह से उसे इंटरप्रेट हम करते जा रहे हैं, जिस तरह से जो जो बात जो जो सवाल मन में उठता है उसके साथ जुड़ा हुआ उसके भी जवाब हमें मिल जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
अपने सभी दर्शकों के साथ भी यही शेयर करना चाहेंगे कि जब हमें परमात्मा जो है स्वयं आकर ये कह रहे हैं, जिसकी पालना स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, जब ये एहसास हो जाता है तो फिर उससे खूबसूरत एहसास और कोई नहीं होता। और इस तरह से रोज बाबा की ये मुरली हमें याद दिलाती है कि हमारी सही पहचान क्या है। अभी तक जब हम कह रहे हैं कि हम देह से जुड़े थे, लेकिन जहां पहचान हो गई अभी तक, एक्चुअली अगर हम देखें शिरो बहन तो इतनी मिस्टेक भी नहीं कहेंगे हम मनुष्य आत्माओं की थी, क्योंकि पहचान ही नहीं थी। लेकिन पहचान होने के बाद अगर हम पुरुषार्थ ना करें तब हम गलती पर जरूर होंगे। और अभी तक जो हमारे गलत अनजाने में ही जो हम करते आ रहे हैं, अज्ञानता में करते आ रहे हैं, उसे भी हम कन्वर्ट करते जाएं, जो योग के माध्यम से संभव है। तो जब एक बार पहचान हो जाती है अपनी सही पहचान, तो वो आंतरिक जो यात्रा है वो शुरू हो सकती है। और अपनी पहचान के साथ साथ परमात्मा की पहचान होती है, तो फिर जब आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है तो जो बाहरी है वो अपने आप परिवर्तित होने लगता है। और जिस तरह से कहा कि ये याद लेकर हम अगर पुरुषार्थ करते जाते हैं तो पुण्य आत्मा बनना जो है हमारा एक ध्येय एक मकसद हो जाता है। अगर कोई बात कोई ऐसा सवाल आपके पास है तो आप सेंटर जा सकते हैं। खासकर मुरली के लिए तो हम हर बार यही कहते हैं कि वहां कुछ देर जाना, जो एक घंटा मुरली सुनना है, वो जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि हम एक ऐसे वातावरण में होते हैं जो हमेशा हर पल हमें आत्मिक एहसास का, आत्मा होने का एक एहसास देता है। उसके बाद हम तैयार रहते हैं पूरे इस युद्ध को लड़ने के लिए, जिसे महाभारत भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है कोई ऐसी बात, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स पर जा सकते हैं। नजदीक के सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर